आज की बात। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के पीछे के कारणों के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि भारत और कनाडा का संबंध कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वैसे यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि ये सब जो हो रहा है वो कुछ ही दिनों की बात नहीं है, बल्कि कई वर्षों से इन दोनों देशों के बीच धीरे धीरे विभिन्न मुद्दों को लेकर जो तनाव बनता जा रहा था, ये उसका नतीजा है। हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं भारत की आजादी से, क्योंकि जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, तब कनाडा के साथ भारत के सबसे अच्छे रिश्ते थे। उस समय जब भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, तब कनाडा ने फूड, फाइनेंस और टेक्निकल समर्थन समेत कई तरह से सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि 1951 में कनाडा ने भारत की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाने के लिए 3.8 बिलियन कनाडाई डॉलर की मदद की थी। इसी तरह 1960 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन डिफेनबेकर ने भारत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता की थी। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते हर दिन मजबूत होते जा रहे थे कि तभी मई 1974 में भारत ने परमाणु प्रशिक्षण किया, जिसके बाद कनाडा भारत से नाराज़ हो जाता है। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया कि जो उपकरण और चीज़ें हमने भारत को बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए दी थीं, उसका उसने दुरुपयोग किया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत और कनाडा के बीच जो तनाव है वो इस समय जिस चरम तक पहुँच चुका है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? साथ ही दोनों देशों के बीच जारी तनातनी कितनी गंभीर है? तो इन सवालों के जवाब में अमरीका की डेलेवर यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर मुक्तदर खान अपनी बात रखते हुए कहते हैं,
देखिए, ये टेंशन्स तो अभी शुरू हुए हैं और ऑलरेडी जो ऑब्जर्वर्स इसको स्टडी करते हैं ये कह रहे हैं कि दे और मतलब इतनी बुरे हालात अमेरिका और इंडिया और कनाडा के बीच में पहले नहीं थे। लेकिन जो असल मुद्दा है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया, क्या उनके पास खोट सबूत है अपनी जो एक्यूजेशन है इंडिया के खिलाफ उसको बैकअप करने के लिए? यहाँ पे पहले दिन जब ये क्राइसिस एक्सप्लोड हुई तो एक सवाल उठ रहा था कि ट्रूडो ने इसको बिहाइंड द सीन्स क्यों नहीं, मैंने भी कई शोज पे यही किया कि ही कुड हैव हैंडल्ड दिस बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि एक बार चीज पब्लिक में आ जाती है तो कंट्रीज का सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके लीडर्स का जो प्राइड होती है ना, वो भी दखल देना शुरू हो जाती है। सो कंट्रीज विल नॉट बैक ऑफ, और इंडिया ने जो इमीडिएटली ना कह दिया ना कि वी हैव नॉट डन दिस, ये मोटिवेटेड है, तो दोनों मुल्क फंस गए हैं। कनाडा ने पब्लिकली अक्यूज कर दिया, नाउ दे हैव टू पुट अप और शट अप, और इंडिया ने ना कह दिया, अगर उनके पास डिसाइसिव सपोर्ट है देन क्या होगा एविडेंस? तो द नेक्स्ट स्टेप रियली इज कि ये क्या ये एविडेंस ये पहुंचा सकते हैं या नहीं, कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर खालिस्तानी। और ये मसला 1.5-2 साल से काफ़ी सीरियस होते जा रहा है डायस्पोरा में। इंडिया के हाई कमिश्नर बर्तानिया में अटैक हुआ, फिर यहाँ पे यूएस में सैन फ्रांसिस्को में एम्बेसी में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेंपल्स पे भी अटैक हो रहे हैं, और कनाडा में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टारगेटेड डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इंडिया इज कंसर्न के डायस्पोरा में, खासतौर से कनाडा में, प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, एंड दे हैव बीन सेइंग के कनाडा को कि आप इसको कंस्ट्रेंट करें, कनाडा बस फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रॉब्लम यह है कि जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्लियामेंट में उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी पार्लियामेंट में कुछ 338 सीट्स हैं कनाडा के और इनके पास कुछ 115 कुछ है, ही डज नॉट हैव द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये डिपेंडेंट है ऑन अनदर पार्टी, द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं, हु इज सरप्राइजिंगली उन्होंने भी खालिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए हैं बयान में, एटलीस्ट रेफरेंडम को उन्होंने सपोर्ट किया कि खालिस्तान का सेपरेटिस्ट रेफरेंडम। तो यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके दबाव में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
दोस्तों, वैसे तो भारत और कनाडा के बीच तनाव के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से जिस कारण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा। भारत सरकार हमेशा कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर चिंताएं प्रकट करती रहती है, जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज खालिस्तान के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। हाल ही में कनाडा ने एक ऐसे परेड की अनुमति दी जिसमें वर्ष 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा निर्मम हत्या को प्रदर्शित किया गया था। इस निरूपण को सिख अलगाववादियों द्वारा हिंसा के महिमा मंडन के रूप में देखा गया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर यह आरोप भी लगा कि वो आए दिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। साथ ही कनाडा की धरती से संचालित खालिस्तानी संगठनों का मुद्दा भारत कनाडा संबंधों में बाधा बना हुआ है। नवीनतम मुद्दे में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने विदेश नीति की जरूरतों के साथ संतुलन बनाए बिना घरेलू राजनीति की आवश्यकताओं के कारण मुद्दों को फिर से उठाया है। यहाँ यही प्रश्न उठता है कि भारत और कनाडा के बीच जारी टकराव कितना गंभीर है और जिस तरह मोदी सरकार इस समस्या से निपट रही है उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। इन सवालों के जवाब में भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं टीकाकार विनोद शर्मा का कहना है कि
देखिए, सख्त और डिसाइसिव एक बात है और किसी गैर मुल्क में उस मुल्क के बाशिंदे के हत्या के पीछे हाथ होना अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत का हाथ उसमें है, लेकिन ये आरोप एक प्रधानमंत्री ने, जो कि एक लोकतांत्रिक मुल्क है, उसने एक दूसरे लोकतांत्रिक मुल्क के प्रधान के पर ये आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री पर नहीं लेकिन मुल्क पे लगाया है अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो याद नहीं है कि हमारे इतिहास में या किसी और मुल्क के इतिहास में भारत को इन्वॉल्व करते हुए इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से किसी इतने ऊंचे लेवल पर ये आरोप लगा हो, ऐसा आरोप लगा हो। क्योंकि इतने ऊंचे दर्जे से ये आरोप लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आरोप सच है या गलत है। ये आरोप लगा है और उसकी रिस्पॉन्स में इंडिया ने उस आरोप को एब्सर्ड बताया। कहानी अब इस पर रुकी हुई है। एक चीज काफी साफ हो जाती है कि भारत की जो अहमियत है इन मुल्कों के लिए, वो अहमियत इनकी जो फाइनल पोजीशन होगी जब एविडेंस आ जाएगा, और एविडेंस तो जस्टिन ट्रूडो को देना पड़ेगा, तो उसके बाद निर्धारित होगी कि इनकी क्या नेशनल पोजीशंस क्या होंगी इस मसले पे। देखिए, मसला गंभीर है।
दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि वर्ष 2020 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्च आयुक्त को तलब किया था और ये सूचित किया था कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दों पर कनाडा के प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और संसद सदस्यों की टिप्पणियां इसके आंतरिक मामलों में अस्वीकार हस्तक्षेप हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रहती है तो भारत और कनाडा के बीच संबंधों पर गंभीर रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ये प्रतिक्रिया तब आई थी जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में किसानों के विरोध पर टिप्पणी की थी और कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करेगा और भारत सरकार से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत में शामिल होने का आग्रह करता है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस समय अपने बयान में कहा था कि इन टिप्पणियों ने कनाडा में हमारे उच्च आयोग और वाणिज्य दूतावासों के सामने चरमपंथी गतिविधियों की सभा को प्रोत्साहित किया है जो सुरक्षा चिंता को बढ़ाते हैं। वैसे अब जिस स्थान पर दोनों देशों के बीच तनाव पहुंच चुका है और जिस तरह कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही कोई भी देश अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अब भारत और कनाडा के बीच बढ़ता टकराव किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के बाद समाप्त होगा? साथ ही क्या दुनिया की कथित बड़ी शक्तियां कनाडा के साथ खड़ी हुई हैं? इस बारे में भारत के वरिष्ठ राजनीतिक जानकार आनंद के सहाय का कहना है कि
ये कहना इस बात को पेश करना कि बड़े मुल्क जो दूसरे हैं जैसे यूएस है, यूके है, ये लोग जो हैं एक कनाडा के साथ खड़े हो गए हैं, माने फोर स्क्वायर खड़े हैं उसके पीछे, अभी वो स्थिति नहीं आई है। शायद उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया है जरूर, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में वहां के सिटीजन के ऊपर सिटीजन की हत्या की गई है और ये उनका एलिगेशन है, अभी तक पूरा सबूत आया नहीं सामने। तो ये है कि किसी दूसरे देश के आदमी ने आके मार दिया, तो इसलिए अपने आप में सुनने पर ये बात अच्छी किसी को भी नहीं लगेगी। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अमेरिका या जो अधिकृत लोग हैं बोलने वाले ब्रिटेन में या इन जगहों में, वो कहें वी आर डीपली कंसर्न। इससे वो ये नहीं समझा जाए कि उनके पीछे चाहे कुछ हो जाए, कनाडा राइट और रॉन्ग, वो सवाल अभी मेरे सामने शायद नहीं हमको दिखता है उस तरह से। एक बात तो ये लग रही है, दूसरे कि बोथ इंडिया एंड कनाडा, इन दोनों के लिए ये मामला जो है उनकी डोमेस्टिक राजनीति के साथ सन गया है। वो ट्रूडो साहब की अपनी परेशानियां हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स डाउन है काफी पहले से, मोदी साहब चुनाव भी जा रहे हैं और हर मुद्दे की तलाश उनको है जो कि उनको काम दे सके। और ये मुद्दा जो कनाडा वाला है, ये जो चाइना में क्या करते थे कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वो बड़े फख्र के साथ कहते थे कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं हमारी आन को, हमारी शान को, हमारी शक्ति को उसका इजहार करेंगे बिल्कुल आगे बढ़ करके। कहते हैं जैसे कहते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, घर में घुस के मारेंगे हम तुमको।
मिलाकर कनाडा की लगभग 4% आबादी भारतीय मूल की है, जो भारतीय प्रवासियों को एक मजबूत चुनावी ताकत बनाती है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो सहित इस देश के कुछ राष्ट्रीय नेता हमेशा से बैसाखी समारोह और खालसा दिवस में भाग लेते रहे हैं, जिसमें अलगाववादियों और उनके कार्यों का महिमा मंडन किया गया है। ट्रूडो ऐसे समूहों और उनकी विचारधाराओं को अपने समर्थन के माध्यम से ये कहते हुए वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं कि कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। वहीं पश्चिमी एशिया में चल रहे टकराव में ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने गजा पर अवैध आतंकी इसराइली शासन द्वारा लगातार किए जा रहे पाशविक एवं क्रूर हमलों और उसमें बच्चों और महिलाओं समेत हजारों लोगों की मौत के बावजूद अपना समर्थन आतंकी ज़ायोनी शासन के साथ दर्शाया है। बहरहाल कनाडा की नीतियों के ही कारण उस पर हमेशा से उंगलियां उठती आई हैं, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी भारत तो कभी ईरान जैसे लोकतांत्रिक देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता आया है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।